नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैम में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी। नमस्कार मनोज जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
धन्यवाद।
आगे बढ़े उससे पहले अब तक की हेडलाइंस जान लेते हैं। महिला क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को चेन्नई में एकमात्र टेस्ट मैच में आज 10 विकेट से हराया। विंबलडन टेनिस ओपन टूर्नामेंट में आज पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में सुमित नागल का मुकाबला सर्बिया के मियोमिर किकमोनोविक से। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा पेरिस डायमंड लीग में भाग नहीं लेंगे। और यूरोप कप फुटबॉल में स्पेन जॉर्जिया को हराकर और इंग्लैंड स्लोवाकिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में। और अब बात सबसे पहले क्रिकेट के मैदान से। महिला क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को चेन्नई में एकमात्र टेस्ट मैच में आज 10 विकेट से हरा दिया। बल्लेबाजों और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को करारी शिकस्त दी। भारत ने शेफाली वर्मा के 205 और स्मृति मंधाना के 149 रन की शतकीय पारी की बदौलत पहली पारी 6 विकेट पर 603 रन बनाकर घोषित की। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका पहली पारी में 266 रन पर ही सिमट गई और उसे फॉलो ऑन खेलना पड़ा। दूसरी पारी में भी दक्षिण अफ्रीका 373 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत को 37 रन का लक्ष्य दिया, जिसे भारत ने बिना किसी नुकसान के हासिल कर लिया। पहले क्लीन स्वीप दिया वनडे सीरीज में 3-0 से, और अब एकमात्र टेस्ट मैच था उसमें भी भारत भारी पड़ गया दक्षिण अफ्रीका।
बिल्कुल, जब स्नेह राणा जैसी खिलाड़ी जो 20 में से 10 विकेट जो है छक्काने का मादा रखती हूँ, और वो उन्होंने कमाल किया भी। और उसके अलावा जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आपको याद होगा, उन्होंने 7 विकेट छक्काए थे, 3 पहली पारी में, 4 दूसरी पारी में, और अब 10 विकेट हॉल करके उन्होंने बिल्कुल मैच को एक तरफा बना दिया। इससे पहले आपने जैसा कि बताया शेफाली वर्मा, जिन्होंने शानदार डबल सेंचुरी बनाई। हम तो बड़े दिनों से देख रहे थे कि शेफाली वर्मा जो डेब्यू मैच की में स्टार खिलाड़ी साबित हुई थी, उसके बाद से वो बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पा रही थी
जी।
लेकिन अच्छी शुरुआत करती थी, लेकिन अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पा रही थी। लेकिन यहां उन्होंने 104 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, ये अपने आप में काबिले तारीफ है कि आप रनों से, आपकी गेंदों से ज्यादा आपके रन है, ये बड़ी बात है। और स्मृति मंधाना पिछले 4 मैचों में 3 सेंचुरी
बना दी, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है दक्षिण अफ्रीका के साथ, और कई रिकॉर्ड्स बने हैं इस मैच में, क्योंकि भारत ने 603 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो भी एक नया रिकॉर्ड है। और इसके अलावा शेफाली वर्मा ने महिला टेस्ट क्रिकेट में 194 गेंदों में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया, जिसे स्ट्राइक रेट की हमने बात की। इसके अलावा जो पहले विकेट के लिए साझेदारी हुई शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना के बीच 292 रन की, वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड।
बिल्कुल काबिले तारीफ, और एक बहुत साइकोलॉजिकल उसका असर पड़ता है अपनी अपोनेंट टीम पर। लेकिन मुझे अच्छा लगा साउथ अफ्रीका की तरफ से भी दूसरी पारी में उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया, क्योंकि ओपनिंग भागीदारी उनकी भी बहुत अच्छी रही।
जी हाँ, उन्होंने अच्छा शुरुआत की, लेकिन वो फिर जैसे ही, क्योंकि वॉलोरा ने 122 रन बनाए, इसके अलावा लूस ने 109 रन की पारी खेली, लेकिन वो जो पारियां हैं उनकी एक विजेता के रूप में वो नहीं बना पाए अपने।
बिल्कुल, मैं तो कहूंगा कि वन साइडेड मैच नहीं होना चाहिए, मैच में रोमांच आना चाहिए। क्योंकि यदि आज महिला क्रिकेट लोकप्रिय हो रहा है, हमने देखा वानखेड़े स्टेडियम में एक मैच में पूरा खचाखच भरा हुआ था, दिल्ली में हमने विमेन प्रीमियर लीग में देखा स्टेडियम ऑलमोस्ट भरा हुआ था, तो विमेन क्रिकेट भी जो है अब शैशव अवस्था में नहीं रहा। यहां भी लोग रुचि ले रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं, और अगर संघर्षपूर्ण मैच होंगे, अपोनेंट टीम के 2 खिलाड़ी भी अगर सेंचुरी बनाते हैं, तो उससे लोगों में रोमांच पैदा होगा
जी। और अब दोनों टीमों के बीच 5 जुलाई से T20 श्रृंखला भी खेली जाएगी। और अब बात विंबलडन टेनिस ओपन की, जो आज से शुरू हो गया है। आज पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के सुमित नागल का मुकाबला सर्बिया के मियोमिर किकमोनोविक से होगा। इसके अलावा डैनिल मेदवेदेव और ग्रिगोर दिमित्रोदेव पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। अगर हम सुमित नागल की बात करें तो बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं, क्योंकि एकमात्र है हमारे जो खिलाड़ी पुरुष सिंगल्स में जो चुनौती पेश कर रहे हैं। और अगर क्योंकि देखा जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन में जिस तरह से उन्होंने 35 साल बाद एक सीडेड खिलाड़ी को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई थी, वो उसको देखे तो और संभावनाएं कह सकते हैं और जागृत हो गई हैं।
बिल्कुल, बढ़ने भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जो 100 की रैंकिंग को वो बैरियर तोड़ा, अब 72वीं रैंकिंग पे हैं, पिछले महीने 71वीं रैंकिंग पर थे, तो ये जाहिर करते हैं कि बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन हो या जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स हैं, वहां पर 2 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स के सेकंड राउंड तक पहुंचे, भारत के लिए ये सिंगल्स में बड़ी उपलब्धि है। सेकंड राउंड तक पहुंचना, ओलंपिक में ये सेकंड राउंड तक पहुंचे थे टोक्यो ओलंपिक में। तो अब क्योंकि उनका जो अपोनेंट है ड्रॉ बड़ा मुश्किल है और सर्बिया का जो खिलाड़ी है किक मानोविच वो जो प्लेयर है वो उसकी रैंकिंग इनसे भी ऊपर है, 53वीं रैंकिंग के वो प्लेयर हैं और जो उनकी बेस्ट रैंकिंग है 2 साल पहले 27वें नंबर पर वो रह चुके हैं। जिस तरह से इनके लिए दूसरे राउंड में पहुंचना एक चुनौती होती है, उस खिलाड़ी के लिए तीसरे या चौथे राउंड में पहुंचना चुनौती होती है, जो चौथे राउंड तक पहुंच चुके हैं एक मौके पर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट।
जैसे क्रिकेट में इस बार हमने उलट फिर देखे हैं वर्ल्ड कप, तो शायद हमें विंबलडन कोर्ट में भी नजर आए।
देखो जी, आप एक उलट फिर कर देते हैं तो उसके बाद जो है दुनिया का जो नंबर एक खिलाड़ी है वो अभी उनसे जूझने के लिए तैयार है और जैनिक सिनर अगर ये जीतते हैं और तीसरे राउंड में उनका मुकाबला दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी से होने वाला है।
जी, और बुधवार को पुरुष डबल्स के पहले दौर में कई भारतीय खिलाड़ी भी अपनी चुनौती पेश करेंगे। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी का सामना फ्रांस के जियोवेनी एम्पेतिशी और एंड्रियन मनारीना की जोड़ी से होगा। इसके अलावा एन श्रीराम बालाजी और ब्रिटेन के ल्यूक जॉनसन की जोड़ी तथा मेते पेवेक और मार्सेलो अरवालो की जोड़ी आमने सामने होंगी। सुमित नागल और सर्बिया के उनके जोड़ीदार दुसान लाजोविक स्पेन की जोड़ी जेम एंटनी मोनार क्लार तथा पेड्रो मार्टिनेज से मुकाबला करेंगी। यूकी भांबरी और फ्रांस की अल्बानो ओलिवेटी की जोड़ी का सामना कजाकिस्तान की जोड़ी से होगा। तो इस बार फिर रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन खेल रहे हैं। तो देखा जाए तो चार भारतीय खिलाड़ी हैं और मतलब सुमित नागल एक पुरुष सिंगल्स में भी हैं और डबल्स में भी चुनौती पेश कर रहे हैं, तो और उम्मीदें हो सकती हैं पदक की शायद हम आगे तक पहुंचे।
मैं समझता हूं कि जो आगे आने वाले जो कॉम्पिटिशन हैं उनके लिए अच्छी खासी ऊर्जा ये बटोरेंगे और उन्होंने साबित कर दिया जैसा भी आपने बताया ओल्ड इज गोल्ड वाली बात कि आप उम्र कोई मायने नहीं रखती। जिस तरह से जो रोहन बोपन्ना ने जो लगातार कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है, तो मैं समझता हूँ एक अच्छी ऊर्जा लेकर जाएंगे इस टूर्नामेंट के जरिए।
हाँ, विंबलडन जीत चुके हैं पहले भी रोहन बोपन्ना और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी वो अपनी उम्र को दरकिनार करते हुए एक और ग्रैंड स्लैम अपने नाम करेंगे।
और सुमित नागल भी बॉयज का टाइटल जीत चुके हैं विंबलडन में 2015 में, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उनको जो ये सतह है ग्रास कोर्ट ये उनको बहुत रास आता है।
ओलंपिक और विश्व चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा मांसपेशियों में असहजता के कारण रविवार को पेरिस डायमंड लीग में भाग नहीं लेंगे। नीरज चोपड़ा पिछले महीने पावो नूरमी खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। नीरज ने ओलंपिक से पहले हुए इन खेलों में 85.97 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया था। जब पिछली बार हुआ था डायमंड लीग में उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था, इस बार शायद ओलंपिक के कारण इन्होंने अपना नाम वापस किया ताकि प्रेशर ना पड़े।
एक प्रेशर ना पड़े और पीछे इनको थोड़ी निगल इंजरी थी, हालांकि उससे अब ये रिकवर कर चुके हैं, लेकिन एहतियात बरतना बहुत जरूरी है क्योंकि आप अपने देश के लिए एक और गोल्ड मेडल की का सपना संजोए हुए हैं, तो बेहतर ही रहेगा कि वो उन्होंने बिल्कुल मैं कहता हूं उनके फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। और क्योंकि भारत में भी वो अभी भुवनेश्वर में जब पीछे उतरे थे तो दूसरे नंबर पर जो रहने वाले खिलाड़ी थे या ये कहिए कि किशोर जेना एशियन गेम्स में जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, अब नेशनल्स भी चल रहे हैं, हालांकि नीरज चोपड़ा नेशनल्स में तो नहीं है लेकिन किशोर जेना का को दो और खिलाड़ियों ने पीछे छोड़ा है। अच्छा। तो इसका मतलब है कि कितना जेवलिन थ्रो में कंपटीशन बढ़ गया है और साहिल सिलवाल जो है जो कि अंडर 20 में टॉप 8 में पहुंचे थे वो स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रहे। पर्सनल बेस्ट उन्होंने अपना दिया है 81.81 मीटर के प्रदर्शन के साथ और विक्रांत मलिक ने भी उनको पीछे छोड़ा। अब सवाल यहां पर यही है कि किशोर जेना क्या लय में नहीं है या क्या बात है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि वो थोड़ा सा इंजरी से उभरे हैं अभी, तो इसलिए वो पूरा 100% अभी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि ओलंपिक से पहले तक वो पूरी तरह दुरुस्त हो जाएंगे।
तो चलो होप फॉर द बेस्ट और देखते हैं आगे का क्या रहता है क्योंकि अब ओलंपिक्स भी शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं।
जी।
फुटबॉल से जुड़ी खबर, यूरो फुटबॉल कप में जर्मनी और स्विट्जरलैंड के अलावा स्पेन और इंग्लैंड भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में आज स्पेन ने जॉर्जिया को 4-1 से हरा दिया। स्पेन के रॉबिन ले नॉर्मेंड के अपने ही गोल पोस्ट में हुए गोल ने जॉर्जिया को आश्चर्यजनक बढ़त दिला दी, लेकिन खेल के 39वें मिनट में रॉड्री ने गोल कर खेल को बराबरी पर ला दिया। इसके अलावा दूसरे हाफ में भी 3 गोल हुए जिससे जो है जॉर्जिया हार गया और स्पेन जीत गया। देखा जाए जब हम अंतिम 16 में प्रवेश की बात हो रही थी तो जॉर्जिया पुर्तगाल को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा था, तो मतलब इस बार जो है उसका किस्मत कह सकते हैं नहीं चली और उसको आज स्पेन से मात झेलनी पड़ी।
लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि स्पेन ने अपने युवा खिलाड़ियों की आजमाइश की है और उन्होंने गोल भी किए हैं या गोल करने में सहायता दी है, असिस्ट किया है। जैसे एक नाम है निको विलियम्स का जिन्होंने शानदार गोल किया इन्हें, और एक गोल में उन्होंने असिस्ट भी किया। एक और खिलाड़ी है लामेल जमाल, उन्होंने एक गोल में असिस्ट किया। उसके बाद जिस तरह से इन्होंने वहां पर नाचे हैं ये लोग, वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना। तो अब अगला मुकाबला जो है स्पेन का बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्वार्टर फाइनल स्पेन वर्सेज
जर्मनी होने वाला है, तो वो बहुत ही शानदार रहेगा क्योंकि स्पेन वर्सेज जर्मनी होना है। इसके अलावा इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बीच मुकाबला होना है। अब जो दो टीमें और रह गई हैं उनका जो तय होगा वो है पुर्तगाल और स्लोवानिया और फ्रांस और बेल्जियम के बीच होने वाले विजेताओं के बीच, और इसके अलावा रोमानिया नीदरलैंड तथा ऑस्ट्रिया और तुर्की के बीच कौन सी टीमें जो हैं, चार टीमें आगे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करती हैं। आज एक अन्य मैच में फ्रांस और बेल्जियम के बीच मुकाबला होगा। कल एक अन्य प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने स्लोवाकिया को 2-1 से पराजित कर दिया। इंग्लैंड के जूद बेलिंगम के शानदार गोल से स्कोर बराबर पर हो गया और मैच अतिरिक्त समय में चला गया। हैरी केन के गोल ने अतिरिक्त समय के पहले ही मिनट में इंग्लैंड को जीत दिलाई। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इंग्लैंड से खैर जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी, तो जब ग्रुप मैचेस हुए थे वो टॉप पे जरूर थी, लेकिन वो एक कहते हैं ना कि जो अपना पूरा जो दमखम दिखाने का जो सब वो था वो नहीं दिखा पाई अगले दौर में पहुंच के, लेकिन आज के मैच में उसे दिखा दिया कि वो टॉप पर क्यों रही।
देखिए उनके जो मैनेजर हैं साउथगेट जो आए हैं वो बहुत ही डिफेंसिव माइंडसेट के हैं और उसका प्रदर्शन पूरी टीम पर पड़ रहा है, बहुत नकारात्मक पड़ रहा है, क्योंकि यही टीम जो है जिस तरह से खेलना चाहिए, जिससे उम्मीद की जाती है इंग्लैंड से, वैसा खेल नहीं प्रदर्शन कर पा रही। जूड बेलिंगम एक खोज साबित हुए, पहले भी वो गोल किया उन्होंने, आज भी गोल किया और गोल बहुत शानदार तरीके से बाइसिकल किक पर उन्होंने किया। और उसके अलावा जो है एक गोल जो है हैरी केन ने किया था हेडर से, क्योंकि अतिरिक्त समय में इसका फैसला हुआ है, निर्धारित समय तक दोनों टीमें एक-एक से बराबर थी, लेकिन हेडर पर जो निर्णायक गोल था हैरी केन का, उनका अनुभव काम आया।
अब बात शतरंज की, भारत के शतरंज स्टार डी कुकेश और मौजूदा चैंपियन चीन के जिंग लिरेन के बीच 2024 विश्व चैंपियनशिप मुकाबले की मेजबानी सिंगापुर करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ फिडे ने आज ये जानकारी दी। इस चैंपियनशिप में मैच की मेजबानी के लिए भारत ने 2 और सिंगापुर ने 1 आवेदन किया था। भारत ने नई दिल्ली और चेन्नई के लिए आवेदन किया था, और यदि डी कुकेश विश्व चैंपियनशिप चीन के जिंग लिरेन को हराने में कामयाब रहते हैं तो वो विश्व चैंपियन जाएंगे और ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले वे दूसरे भारतीय होंगे। इससे पहले विश्वनाथन आनंद 5 बार के विश्व चैंपियन रह चुके हैं।
जी बिल्कुल, गुकेश के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है और जिस तरह से उनका अनुभव अभी काम आया है, और क्योंकि अभी युवा है, लेकिन युवा होते हुए भी जो जितनी तमाम इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर बार एक नई सीख के साथ उसको वो अपना अमली जामा पहनाते हैं और उसमें अपोनेंट बिल्कुल धराशायी हो जाता है।
भारत के शीर्ष स्नूकर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी कल से सऊदी अरब के रियाद में शुरू हो रही एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में खिताब की हैट्रिक पूरा करने के लक्ष्य के साथ भाग लेंगे। इस 4 दिवसीय टूर्नामेंट में एशिया से शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें आडवाणी के अलावा सौरभ कोठारी और ध्रुव असितवाला भी भारतीय चुनौती पेश करेंगे। और जाते जाते एक अच्छी खबर, एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी बोर्ड ने एशियाई खेलों में योग को शामिल करने पर सहमति व्यक्त कर दी है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने आज इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परिषद की आम सभा से भी इसे मंजूरी मिलने पर इसे खेलों में स्थान मिल जाएगा। तो अपने आप में पहले इंटरनेशनल इवेंट बना योग और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाने लगा और अब खेलों में भी इसे तवज्जो मिलने जा रही है।
जी बिल्कुल, मैं तो समझता हूं कि जब ये रोजगार से जुड़ जाएगा जब ये खेल और कई प्रतिभाएं सामने आएंगी तो आपको योग में भी भारत जो है शीर्ष स्थान पर दिखाई देगा आने वाले समय में।
जी देखते हैं अब आने वाले समय में क्या होता है, पर इस समय स्टूडियो में जो घड़ी है वो कह रही है आपसे अनुमति ली जाए। मनोज जी आप स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
धन्यवाद
श्रोताओं, प्रियंका अरोड़ा स्पोर्ट्स कैम्प की पूरी टीम को दीजिए अनुमति कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की। नमस्कार।